ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मानव तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मानव तस्करी संबंधी नियमावली का संशोधन किया जा रहा है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी का कथन। नेपाल में आज कोरोना के 895 नए मामले आए सामने। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी प्रदेशों में इलाज की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। काठमांडू की तारकेश्वर नगर पालिका काव्रे स्थली में एक ही परिवार के 4 लोग पाए गए मृत अवस्था में। और भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में हुई आगलगी के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी ने कहा कि वैदेशिक रोजगारी के नाम पर होने वाली मानव तस्करी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आज प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की बैठक में मंत्री रेग्मी ने कहा कि सबके साझा प्रयास से ही इस तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज सिंह दरबार में हुई समिति की बैठक में मंत्री रेग्मी ने बताया कि अलग अलग तरीकों से होने वाली मानव तस्करी में संलग्न लोगों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के संरक्षण के लिए मानव तस्करी नियमावली 2064 में संशोधन किया जा रहा है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति और दायित्व के क्रियान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति की बैठक में विभिन्न विषयों में विचार विमर्श हुआ। अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप लगायत विषयों में विचार विमर्श के लिए परराष्ट्र मंत्री नारायण खड़का, प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा और रक्षा सचिव किरण राज शर्मा को बुलाया गया था, लेकिन तीनों ही अनुपस्थिति होने के कारण विभिन्न विषयों में सामान्य विचार विमर्श के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। ये बात समिति के सभापति नीरू देवी जयरूल ने बताई। देश भर में आज कोरोना के 895 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महज 264 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं आज 2 संक्रमितों की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी 7 प्रदेशों के अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ समीर कुमार अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने सभी 7 प्रदेशों में कुल 17 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। काठमांडू की तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 काव्रे स्थली में एक ही परिवार के 4 लोग मृत अवस्था में पाए गए। काव्रे स्थली के पद्मसाल में घर बनाकर बसे हुए गोरखा भीमसेन थापा गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के 41 वर्षीय दिनेश पांडे, उनकी श्रीमती 39 वर्षीय सुनीता, 13 साल का बेटी और 8 साल का बेटा मृत हालत में पाए गए। नगरपालिका के प्रमुख कृष्ण हरि महर्जन ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक पांडे ने परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने के बाद आत्महत्या की है। मामले की जांच चल रही है। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ने कास्की, प्यूठान और पालपा में लगातार बारिश के बाद आए भूस्खलन से हुई क्षति और पीड़ितों को राहत देने लगायत के लिए हो रही पहल के बारे में जानकारी ली। साथ ही गृहमंत्री खाड़ ने उधार और राहत के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर मंत्रालय को खबर करने का निर्देश भी किया है। बता दें कि कास्की की पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 डिहीगो पाटन में स्थित लक्ष्मी खड़का का घर भूस्खलन में दबने के कारण किराए पर रह रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी देने के क्रम में प्रमुख जिला अधिकारी ने गृहमंत्री खाड़ को बताया कि मृतक किरायेदार की पहचान माछापुछरी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 तातोपानी के 26 वर्षीय संतोष सुनार के रूप में की गई है। इसी तरह लगातार बारिश के बाद पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 13 कमल पोखरी इलाके के घर डुबान में है। कल शाम से हुई लगातार बारिश के बाद करीब 100 घर डुबान में है। ये बात वार्ड अध्यक्ष किरण बराल ने बताई। भूस्खलन का मलबा हटाने के बाद नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क पूरी तरह संचालन में आ गई है। सड़क खंड अंतर्गत भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 घुमावने के नजदीक गाद के साथ आए भूस्खलन हटाने के बाद सड़क दोतरफा रूप से संचालन में आई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। लगातार की बारिश के बाद आए भूस्खलन के कारण हेटौड़ा काठमांडू को जोड़ने वाले छोटे मार्ग भैंसे भीमफेदी सड़क खंड अवरुद्ध हो गया है। आज दोपहर भीमफेदी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 में ऊपर से आए भूस्खलन आने के बाद सड़क खंड में यातायात अवरुद्ध है। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदी ने दी। बता दें कि सड़क अवरुद्ध होने से काठमांडू से कुलेखानी भीमफेदी होते हुए हेटौड़ा की ओर जाने वाले और हेटौड़ा से भीमफेदी होते हुए काठमांडू की ओर आने वाले वाहन फंसे हुए हैं। भीमफेदी के इंस्पेक्टर प्रतिमा कार्की ने बताया कि मलबे को हटाने का काम शुरू हो चुका है। इसी तरह कल से लगातार हो रही बारिश के कारण आए भूस्खलन और सड़क टूट जाने से हिमालयी जिले मनांग की एकमात्र सड़क अवरुद्ध बनी हुई है। इसी तरह बाढ़ व भूस्खलन के कारण लमजुंग के मर्स्यांगदी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 राम बाजार स्थित घोपटी भीर और मनांग के कोतो में क्षति हुई है। साथ ही बेसी शहर चामे सड़क अवरुद्ध बनी हुई है। ये जानकारी डुमरे बेसी शहर चामे सड़क योजना कार्यालय के सब इंजीनियर सुमन अधिकारी ने दी। मध्य प्रदेश सरकार ने जनकपुर धाम में संचालित उद्योग वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारिज करने को निर्णय किया है। मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की आज की बैठक ने निर्देशनालय को खारिज करने का निर्णय किया। ये जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता तथा अर्थमंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह ने दी। इसी तरह बैठक में परसा के बीरगंज में उद्योग विभाग की स्थापना और सिरहा के लहान, धनुषा के जनकपुर धाम और परसा के बीरगंज में एक एक पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना करने का निर्णय भी किया है। इसके अलावा मध्य सरकार ने कई अन्य निर्णय किए। मोहतरी की मटिहानी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में अवस्थित प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मठ में परंपरागत रूप में मनाया जाने वाला झूलनोत्सव पर्व कल रात से शुरू हुआ। श्रावण पूर्णिमा तक मनाये जाने वाला यह पर्व जनकपुर धाम के जानकी मंदिर, राम मंदिर लगायत देश के सरलाही, सिरहा, सप्तरी और भारत के तिरहुत क्षेत्र बिहार के विभिन्न मठ मंदिरों में यह पर्व भगवान और भगवती को झूला झूलाते हुए और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकी के साथ मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज दोपहर 2:45 के करीब एक निजी अस्पताल में आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 स्टाफ भी शामिल है। 8 की हालात गंभीर है। प्रशासन ने बताया है कि 3 मंजिला न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के इंस्ट्रेस पर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे के वक्त अस्पताल में 35 लोग थे, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। अस्पताल प्रबंध का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हादसे की जांच जबलपुर डिवीजनल कमिश्नर बी चंद्रशेखर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख जताया और मृतक के परिवारजनों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मानव तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मानव तस्करी संबंधी नियमावली का संशोधन किया जा रहा है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी का कथन। नेपाल में आज कोरोना के 895 नए मामले आए सामने। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी प्रदेशों में इलाज की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। काठमांडू की तारकेश्वर नगर पालिका कावरे स्थली में एक ही परिवार के 4 लोग पाए गए मृत अवस्था में और भारतीय भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में हुई आग लगी के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।